भाग 10 सरकार के अंग कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसे विधानमंडल का पूरक और समकक्षी दोनों कहा जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करते हुए देश का शासन करना है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में कार्यकारिणी सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। देश के प्रशासन में नियुक्त समस्त पदाधिकारी कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित हैं। प्रोफेसर गॉर्नर का कथन है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा, जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कर कानून के रूप में व्यक्त किया है, को कार्य रूप में परिणित करना है। विस्तृत अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग सम्मिलित हैं। पहला, राज्य और कार्यपालिका का प्रधान। दूसरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तीसरा, प्रशासकीय अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति अथवा राज्य के प्रधान से लेकर साधारण चपरासी और गांव के चौकीदार तक सभी कार्यपालिका के ही अंग हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र में कार्यपालिका का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता। यहाँ कार्यपालिका का अर्थ राज्य प्रधान, मंत्री, मंत्रिमंडल, विभागों के प्रधान आदि से लिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में राष्ट्रपति तथा उसका मंत्रिमंडल, ब्रिटेन में राजा तथा उसका मंत्रिमंडल और अमेरिका में राष्ट्रपति तथा उसके निर्धारित सचिवों को कार्यपालिका कहा जाता है। आधुनिक अर्थ में इसके अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति सम्मिलित हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं, कानूनों को कार्यान्वित करते हुए देखते हैं तथा सैनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य के अंदर जितने भी सिविल या प्रशासन के स्थायी अधिकारी होते हैं, उन्हें कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं गिना जाता। कार्यपालिका का निर्माण करने अथवा चुनने का तरीका। विश्व के विभिन्न देशों में कार्यपालिका का निर्माण करने अथवा उसके नेता को चुनने के विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। इनमें चार तरीके अधिक प्रचलित हैं। पहला, वंशानुगुणत विधि। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। तीसरा, निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चौथा, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन या मनोनयन। पहला, वंशानुगुणत कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के अनुसार किसी देश में किसी खास वंश का आदमी ही कार्यपालिका का सदस्य अथवा प्रधान होगा और उत्तराधिकारी सर्वथा ज्येष्ठाधिकार कानून द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह की व्यवस्था इंग्लैंड में है। बेल्जियम में भी इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी पदावधि आजीवन है, परंतु आज के प्रजातांत्रिक युग में इस प्रकार की कार्यपालिका नहीं पाई जाती। जिन देशों में यह प्रचलित है, वहाँ भी इसके हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं है। उदाहरणतः इंग्लैंड का राजा केवल नाममात्र का ही प्रधान है। वहाँ की वास्तविक शक्ति कार्यपालिका मंत्री परिषद है, राजा नहीं। दूसरा, जनता द्वारा निर्वाचन। कार्यपालिका का चुनाव जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भी होता है। जर्मनी के वाइमार संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही होता था। आज भी चिली, घाना तथा दक्षिणी अमेरिका के कुछ राज्यों में राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होता है। इस पद्धति के अनेक लाभ बतलाए गए हैं। इसमें जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। वह किसी व्यक्ति को पूरी तरह परख कर चुनौती कर सकता है। कार्यपालिका जनतांत्रिक एवं जनप्रिय होती है और उसमें जनता का विश्वास होता है। उसके निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होने की संभावना नहीं रहती, लेकिन यह भी पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है। राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के समय देश में आवश्यक उथल पुथल तथा अव्यवस्था पैदा होती है। तीसरा, निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन की उपयुक्त बुराइयों से बचने के लिए कई देशों में कार्यपालिका के चुनाव में प्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका के अध्यक्ष का चुनाव नहीं करती, वह इस अध्यक्ष को निर्वाचित करने वाले को निर्वाचित कर देती है। यह पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और स्पेन में प्रचलित है। चौथा, व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका के ही सदस्य कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति तथा स्विट्जरलैंड में संघीय कार्यपालिका परिषद का निर्वाचन इसी पद्धति के आधार पर होता है। इस प्रणाली से प्रमुख लाभ यह है कि योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही निर्वाचन में भाग लेते हैं और वे ऐसे ही व्यक्ति को राज्याध्यक्ष या प्रधान चुनते हैं जो वस्तुतः योग्य रहता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सहयोग और अंतर्निर्भरता की भावना भी बनी रहती है। संपूर्ण देशव्यापी निर्वाचन की अनावश्यक उथल पुथल से भी बच जाता है, लेकिन इसी पद्धति की कुछ रूटियां भी हैं। कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका द्वारा चुने जाने कारण उसके हाथ में एक कठपुतला मात्र बन जाता है। यह पद्धति शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के विपरीत है। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार। कार्यपालिका के निम्नलिखित प्रमुख स्वरूप हैं। पहला, संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीसरा, एकल और बहुसंख्यक कार्यपालिका। पहला, संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक या ध्वज मात्र या नामात्र की कार्यपालिका उसको कहते हैं जो स्वयं वस्तुतः कुछ भी कार्य नहीं करती, परंतु कार्यपालिका का समस्त कार्य उसी के नाम से होता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिद्धांत रूप में राज्य का प्रधान होता है, लेकिन प्रशासन की वास्तविक शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग वह नहीं कर सकता। जहाँ इस प्रकार का नामात्र का प्रधान रहता है, वहाँ वास्तविक शक्ति कार्यपालिका शक्ति एक मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में निहित रहती है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था इंग्लैंड में पाई जाती है, फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र तथा भारत के राष्ट्रपति ध्वज मात्र या नामात्र की कार्यपालिका के सर्वोत्तम उदाहरण है। नामात्र की कार्यपालिका वंशानुगुणत और निर्वाचन दोनों ही हो सकती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के सम्राट का पद वंशानुगुणत तथा फ्रांस एवं भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, जहां पर अध्यक्षात्मक शासन पद्धति तथा अधिनायक तंत्र है। वहां संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका एक ही व्यक्ति दोनों में निहित होती है। दूसरा, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका वह है जिसका निर्माण संसद से होता है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अपूर्व गठबंधन रहता है। इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल देश का वास्तविक शासक होता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है, जिसके नाम पर संसदीय कार्यपालिका अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। इंग्लैंड और भारत में इसी प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। दोनों देशों में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यकारिणी है, जो राजा या राष्ट्रपति के नाम पर समस्त शासनात्मक संगठन का संचालन करती है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी त्रुटि इसकी अस्थिरता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं, जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग रहती है। संविधान के द्वारा दोनों की शक्ति बटी रहती है और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियाँ राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती है और वह अपने मंत्रियों की सहायता से शासन कार्य संचालन करता है। राष्ट्रपति अथवा मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और वे न उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका ऐसी कार्यपालिका पर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकती है। इसका उदाहरण अमेरिका में मिलता है। वहाँ राष्ट्रपति तथा उसके सचिव कांग्रेस से पृथक तथा स्वतंत्र हैं। दोनों का गठन तथा कार्य संविधान द्वारा निर्धारित है। तीसरा, एकल और बहुसंख्यक कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कितने व्यक्तियों के हाथों में रहती है, इस आधार पर भी कार्यपालिका के दो भेद हैं, एकल और बहुसंख्यक कार्यपालिका। यदि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ संवैधानिक और व्यक्ति में निहित हो रहती हैं तो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरणतः इंग्लैंड, भारत एवं अमेरिका में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। इसके विपरीत, जब कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न सीमित रहकर कुछ व्यक्तियों की हाथों में सीमित रहती है तो उसे बहुसंख्यक या बहु कार्यपालिका या मंडल कार्यपालिका कहते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका स्विट्जरलैंड और रूस में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद कहते हैं। यह 7 व्यक्तियों की एक परिषद होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से परिषद के प्रधान चुने जाते हैं, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाता है। सिर्फ वह नाम का प्रधान होता है। स्विट्जरलैंड की भांति रूस में 33 व्यक्तियों की एक बहुल कार्यकारिणी होती है, जिसे प्रेजिडियम कहते हैं। इसका प्रधान फेडरल काउंसिल के प्रधान की भांति केवल एक संवैधानिक स्थिति में ही रहता है। यह रूसी शासन व्यवस्था की एक विलक्षण संस्था है। एकल कार्यपालिका का गुण यह है कि अधिक शक्तिशाली और वास्तविक कार्यपालिका यह होती है। बहुसंख्यक कार्यपालिका के अनेक गुण बताए गए हैं। इसके अंतर्गत किसी एक भी व्यक्ति के निरंकुश होने की आशंका नहीं रहती और ना शक्ति का कभी दुरुपयोग होता है। वह शासन कार्य में अधिक कुशल होती है, किंतु इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसमें सर्वदा मतभेद और संघर्ष की संभावना रहती है। इसमें निर्णय की तत्परता, उद्देश्यों की एकता, शक्ति का अभाव रहता है। शासन कार्य का संचालन ठीक से नहीं हो पाता। इसमें जनता को किसी प्रकार की राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं मिलता। नेपोलियन ने एक बार ठीक ही कहा था कि 2 अच्छे जनरलों की अपेक्षा एक बुरा जनरल होता है। हैमिल्टन ने एक कुशल कार्यपालिका के लिए एकता और पारस्परिक सहयोग पर अत्यधिक जोर दिया था, लेकिन बहुत कार्यपालिका कभी कभी इन गुणों से रहित रह जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि एकल व बहुल दोनों प्रकार की कार्यपालिका में कौन अत्यधिक उपयुक्त है। जहाँ तक विभिन्न विद्वानों के विचार का प्रश्न है, एकल कार्यपालिका को उत्तम ठहराया गया है। बुलजे का कथन है कि एक व्यक्ति के कार्यपालिका के काम स्पष्ट हैं। वह सरकार में एकता और योग्यता लाने की क्षमता रखता है और अकेला होने के कारण वह या उसके मंत्रिमंडल उत्तरदायी होते हैं। किंतु इसके विपरीत, जहां 2 प्रधान सेनापति होंगे, वे यदि भिन्न दलों के होंगे तो एक दूसरे के अवरोधी होंगे, और यदि उसी दल के होंगे तो ईर्ष्यालु और प्रतिद्वंद्वी होंगे। अमेरिकन न्यायाधीश स्टोरी ने इस बात का समर्थन किया है कि कार्यपालिका को एकात्मक और व्यवस्थापिका को बहुसंख्यात्मक होना चाहिए। जहाँ तक दोनों ही व्यवहारिक प्रश्न है, स्विट्जरलैंड और रूस को छोड़कर विश्व के प्राय सभी देशों में एकल कार्यपालिका की अपनाई गई है, आज के युग में बहुल कार्यपालिका सफल नहीं हो सकती। कार्यपालिका के कार्य सैद्धांतिक रूप में कार्यपालिका का नाम विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है, लेकिन आधुनिक राज्य में इसका स्थान इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि प्राय उसी के लिए सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज यह केवल कानूनों को लागू करने का ही कार्य नहीं करती, बल्कि इसके अलावा भी अनेक कार्य करती है, जिनको एक छोटी सी तालिका में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। आज राज्य का रूप कल्याणकारी होने के कारण उसका कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है और इसके फलस्वरूप कार्यपालिका के कार्यों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिए इसके कार्यों को निम्नलिखित रूप से वर्णन करना कठिन है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य निम्न श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, प्रशासकीय कार्य, किसी प्रकार के संगठन अथवा राज्य की सर्त आंतरिक सुरक्षा को कायम करना है। परिणामतः कार्यपालिका का प्रथम कार्य देश के आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था करते हुए सुरक्षा की गारंटी देना है। इस हेतु कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में लागू करती है, शिक्षा की उचित व्यवस्था करती है, वह कानूनों को कार्य रूप देने के लिए राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके लिए उचित आदेशों एवं देखरेख और उनके अधिकार तथा कर्तव्यों की व्यवस्था करती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का कार्य और अधिक कुशलता से होता है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री किसी विशेष विभाग या कई विभागों को अपने जिम्मे उन्हें कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयत्न करता है और इसके लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, कूटनीति कार्य। आज सभी राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार के सदस्य हैं, अतः सभी राष्ट्रों को अपनी सुविधाओं के लिए एक दूसरे के साथ कूटनीति संबंध रखना पड़ता है। कूटनीति शब्द से विदेशी राज्यों के साथ किए जाने वाले सभी संबंध शामिल हो जाते हैं। कार्यपालिका विदेशों के साथ संबंध स्थापित करती है, उन देशों में अपने दूतावास स्थापित करती है, राजदूतों की नियुक्ति करती है एवं अन्य देशों से आए हुए राजदूतों का स्वागत करती है। कार्यपालिका विदेशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक सभी प्रकार के समझौते संपन्न करती है। तीसरा, सैनिक कार्य। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कार्य करना कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। यह स्थल, जल तथा नभ सेनाओं का संगठन करती है, उन पर नियंत्रण रखती है और उनके द्वारा देश की सुरक्षा करती है। मौका पड़ने पर कार्यपालिका किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकती है। यह विदेशों के साथ संधि एवं सैनिक समझौता भी कर सकती है। चांसलर केंट का कथन है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना, बाहरी आक्रमण से रक्षा स्वभावत है कार्यपालिका संबंधी कार्य है। चौथा, विधि निर्माण संबंधी कार्य। किसी भी देश को कार्यपालिका किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका के साथ विधि निर्माण के कार्य में अवश्य भाग लेती है अथवा उसे प्रभावित करती है। कार्यपालिका को इस बात का अधिकार है कि वह विधानमंडल के अधिवेशनों को बुला सकती है, कुछ काल के लिए स्थगित अथवा भंग भी कर सकती है। संसदीय पद्धति की सरकार में कार्यपालिका संसद का अधिवेशन आमंत्रित करती है, कुछ समय के लिए स्थगित करती है अथवा उसे भंग करके नव निर्वाचन का भी आदेश देती है। विधानमंडल को संदेश भेजकर सरकार इच्छित नीति से अवगत करा सकती है। अध्यक्षात्मक पद्धति में भी राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अभिन्न संबंध होता है। अतः विधि निर्माण के क्षेत्र में यह कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। साधारणतः सभी प्रकार के विधेयकों का प्रारूप कार्यपालिका ही तैयार करती है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि कार्यपालिका का प्रधान अपनी स्वीकृति ना दे दे। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति निलंब निषाधिकार शक्ति के चलते विधि निर्माण में संसदीय व्यवस्थापिका को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। व्यवस्थापिका के विषांतरी काल में आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी के प्रधान को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार रहता है। उदाहरणतः भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अध्यादेश को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे। वर्तमान युग में व्यवस्थापिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से कार्यपालिका के विधायन अधिकार भी बहुत बढ़ गए हैं। आज संसद के पास ना तो उतना समय और ना ही ऐसी योग्यता ही है जिनके चलते यह हर कानून पर प्रावधिक ढंग से विचार करे। अतः वह किसी विधेयक को केवल साधारण रूपरेखा तैयार कर देती है। मंत्रिमंडल इससे फायदा उठाकर मनमाने ढंग से कानूनों का निर्माण करता है। इसे उपविधायन या हस्तांतरित विधायन कहते हैं। कार्यपालिका के इस अधिकार को न्यायाधीश हिवट ने नई निरंकुशता कहकर संबोधित किया है। पांचवा, न्यायिक कार्य। प्रत्येक देश की कार्यपालिका के प्रधान को कुछ न्यायिक कार्य भी करने पड़ते हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार, अपराधियों को क्षमादान देने, दंड को घटाने अथवा मुलतवी करने का अधिकार। भारत तथा अमेरिका के राज्याध्यक्षों को यह अधिकार प्राप्त हैं। छठवां, वित्तीय कार्य। कार्यपालिका धन के लिए जनता पर कर लगाने अथवा बढ़ाने एवं एकत्र करने का कार्य करती है। यह नए प्रकार के कर लगाती है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यपालिका के अंतर्गत एक वित्त विभाग रहता है। यह प्रत्येक विभाग के आय व्यय का निरीक्षण करती है और इस पर नियंत्रण रखती है। सातवां, अन्य कार्य। यह कुछ अतिरिक्त कार्यों को भी संपादित करती है, जिसमें उपाधियों को वितरण करना, व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पेंशन या अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता देना आदि शामिल है। वर्तमान युग में राज्यों के कार्यों में प्राप्त वृद्धि हो रही है और इसके फलस्वरूप कार्यपालिका का आधार एवं कार्यक्षेत्र भी दिन प्रतिदिन विस्तृत होता जा रहा है। आज की कार्यपालिका केवल प्रशासन कार्य से ही मतलब नहीं रखती, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू से संबंधित कार्यों को अपनी परिधि में खींच देती है। आज व्यवस्थापिका की स्थिति इसके सामने गौण हो गई है। इसके कार्य एक नहीं अनेक हैं। वर्तमान युग के लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, दलबंदी की प्रथा आदि ने कार्यपालिका के स्वरूप को इतना जटिल एवं शक्तिशाली बना दिया है कि इसके कार्य दिन प्रतिदिन अबाध गति से बढ़ते जा रहे हैं।